अब आगे? वहीं आस्था ने जैसे ही देखा कि अरमान को भी अब अविनाश को देकर गुस्सा आ रहा था, तो ना जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और वो तुरंत थूक कटकते हुए बोली, अरमान जी, आप यहाँ? अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, रौनक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अविनाश की आंखों में देख रही थी, उसका ध्यान भी अब उन चारों पर चला गया था। अब वहीं अरमान ने आस्था की आवाज सुनकर आस्था की तरफ देखा। उसके पास जाकर उसने आस्था को अपने सीने से लगाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, और तब अरमान ने तिरछी नजरों से इशारा किया और बाकी सबने जाकर अविनाश को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि अभी तक अरमान की आंखों से अविनाश का चेहरा नहीं हटा था। जब अविनाश ने आस्था को मंदिर की सीढ़ियों से गिरने से बचाया था, तो तब से अविनाश उसकी आंखों में था, और उसने अविनाश को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भी लगा रखा था। लेकिन आज अविनाश खुद ब खुद ही उसे मिल गया था, तो अब वो अविनाश को भला कैसे जाने दे सकता था। तभी आहान ने आगे बढ़कर एक मुक्का अविनाश के मुंह पर दे मारा। आखिरकार उसने रौनक को छुआ था, तो आहान को तो मिर्ची लग गई थी। तब अविनाश के होंठों के पास से खून निकल रहा था। अविनाश का खून निकलते ही ना जाने क्यों आस्था को दर्द सा महसूस हुआ, और वो घबराई आवाज में बोली, आहान भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? अब जैसे ही आस्था ने थोड़ी तेज आवाज में ये बोला, सभी लोग हैरानी से आस्था की ओर देखने लगे। वहीं अरमान तो आस्था को इस तरह से देख रहा था मानो वो उस अनजान लड़के को आखिर क्यों बचाना चाहती है। तभी आस्था को एहसास हुआ कि सबकी नजरें इस वक्त उस पर टिकी हुई हैं। तब आस्था जल्दी से बात बदलते हुए बोली, हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले हमें उसे बेचारे की बात तो सुन लेनी चाहिए, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है। तब रश्मि आस्था को घूरते हुए नाखुश होकर बोली, आखिरकार आस्था, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने बोला ना, मैंने खुद देखा इस लड़के को सब लड़कियों के गले की तरफ देखते हुए। ये लड़का बिल्कुल भी शरीफ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। अब जैसे ही रश्मि ने ये बताया, आकाश के तन बदन में आग लग गई थी कि उसने उसकी बीवी रश्मि को भी देखा है, तो इसीलिए आकाश तुरंत उसे अविनाश के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके गिरिबान को पकड़ते हुए बोला, सच सच बता, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? क्या तुझे हमारी किसी राइवल पार्टी के आदमी ने भेजा है इस तरह से हमारे परिवार की औरतों को परेशान करने के लिए? बोल, जवाब दे। अब अविनाश इस तरह की बातें सुनकर इरिटेट होकर बिगलते हुए बोला, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे, मैं तो आप लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ, और हाँ, मैं देख रहा था सबके गले की तरफ, लेकिन मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। आप प्लीज़, मैं कोई सड़क छाप या आवारा लड़का नहीं हूँ, आखिरकार आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तभी आहान ने एक और चांटा उसके मुँह पर मारते हुए कहा, अच्छा तो बता, कौन है तू? हाँ, कहीं का नवाब है, कहीं का मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी भाभी को घूरने की? बोल, जवाब दे। आहान की बातें सुनकर अब तो अविनाश और ज्यादा इरिटेट हो गया था। उसे समझ में नहीं आया कि वो आखिरकार इन लोगों को बताए तो बताए कैसे, कि वो लड़कियों का गला सिर्फ और सिर्फ लॉकेट देखने के लिए देख रहा था, इस तरह से उन्हें गलत नज़र से नहीं देख रहा था। एक तो अविनाश शुरू से ही विदेश में पला पढ़ा था, तो उसे ज्यादातर लोगों को फेस करने की आदत नहीं थी। ज्यादातर वो केवल कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े लोगों से ही मिला करता था। ज्यादातर उसके सेक्रेटरी या उसके पास काम करने वाले लोग ही सभी क्राउड का सामना किया करते थे। अविनाश बहुत कम सबका सामना किया करता था, इसलिए अविनाश सही से उन लोगों को अपनी पहचान नहीं बता पा रहा था और ना ही उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहा था। अचानक सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और सुमित की बात सुनकर सब सुमित को घूर कर देखने लगे थे, जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। वहीं ध्रुव तो सोचने लगा कि हमारे मामले में पुलिस कब से इन्वॉल्व होने लगी, क्योंकि अरमान सिंघानिया तो पुलिस को अपनी पॉकेट में रखता था, इस तरह से वो पुलिस को भला कैसे सुमित इन्वॉल्व करने के लिए कह सकता था। ध्रुव बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि इस वक्त आहान, आकाश और अरमान भी सुमित को ही देख रहे हैं। तब सुमित सबकी नज़रों को भांप कर अपने अंदाज में इशारा करते हुए बोला, वैसे भी रश्मि, आस्था और रौनक तो यहाँ हैं ही, वो बता भी देंगे कि लड़का सब लड़कियों को घूर रहा था। तब जैसे ही सुमित ने बातों बातों में इस बात का उन्हें एहसास करवाया कि इस वक्त सारी लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, तो सीधे सीधे तरीके से वो अपनी बंदूक निकालकर अविनाश को डरा धमका नहीं सकते थे, इसीलिए उसने पुलिस का नाम लिया कि शायद पुलिस के डर से अविनाश ये बात कबूल कर लेगा कि हाँ, वो गलती कर रहा था। अब तभी सुमित की बातों का मतलब समझकर ध्रुव और आहान भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, और तब तक आकाश ने पुलिस को फोन भी कर दिया था। जल्दी ही पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर वहां मौजूद थे, क्योंकि फोन अरमान सिंघानिया की तरफ से गया था, तो पुलिस वालों के लिए यही बहुत था कि इस वक्त ये मामला कितना ज्यादा संजीदा हो सकता है। वहीं आस्था को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो अविनाश को बचाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकती थी। अगर वो ज्यादा कुछ बोलती है तो शायद सबके सवालों के घेरे में आ जाती, लेकिन ना जाने क्यों आस्था का दिल बार बार कह रहा था कि ये लड़का बेगुनाह है। वेल, अब जैसे ही पुलिस वहां आई और उन्होंने अविनाश को इस तरह से आहान और ध्रुव के साथ देखा, क्योंकि एक तरफ से आहान ने तो एक तरफ से ध्रुव ने अविनाश को पकड़ के रखा था कि कहीं पुलिस के डर से अविनाश वहां से भाग ना जाए। तभी आहान नाराजगी जताते हुए बोला, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। देखो, हमने आपका एक जरूरी काम कर दिया। औरतों पर गलती नजर डालने वाला मुजरम हमने पकड़ लिया। अब जैसे ही रौनक को घूरते हुए आहान ने ये कहा, तब पुलिस वाले बड़े ही ध्यान से अविनाश को देखने लगे और घूरते हुए बोले, माफ कीजिएगा सर, लेकिन इन्हें तो हमने आज तक कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं देखा। कौन है ये? शायद ये इस शहर में नए हैं। अब जैसे ही अविनाश की ओर देखकर पुलिस वाले ने ये कहा, सब लोग हैरानी से अविनाश को देखने लगे थे, क्योंकि पुलिस वालों को तो क्रिमिनल से आए दिन पाला पड़ता ही रहता था, तो अविनाश को तो उन्होंने कभी भी नहीं देखा, और वैसे भी अविनाश पहली बार इस शहर में आया था। तब अविनाश तपाक से बोला, एग्जैक्टली ऑफिसर, मैं इन लोगों को कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एंजल डिंपल को लेकर घर तक पहुंच गई थी, लेकिन तब उसे रियलाइज हुआ कि इस वक्त उसका फोन कहीं और नहीं बल्कि उस होटल में रह गया है जिस होटल से वो डिंपल को लेकर गई थी, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा ड्रामा हो गया था कि उसे अपना सामान वहां से उठाने का मौका नहीं मिला था, और सारे कॉन्टैक्ट, स्पेशली अविनाश का नंबर, सब कुछ उसके फोन में ही था। और यू नो, टेक्नोलॉजी के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग अपने खास खास नंबर याद नहीं कर पाते, तो इसीलिए एंजल को काफी टेंशन हो गई। इसीलिए वो वापस से एक बार फिर से होटल की ओर रवाना हो चुकी थी, और होटल में पहुंच कर जैसे ही उसने वहां ये सब कुछ ड्रामा देखा, तब उसने देखा कि अविनाश को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, तो एंजल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं अविनाश उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए आप लोगों को जरूर गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जो आप लोग समझ रहे हैं। अविनाश अपनी असली पहचान, अपना असली नाम बता ही नहीं पा रहा था, वो केवल अभी उन्हें यही बोले जा रहा था कि उसे गलत समझा जा रहा था।
अब जैसे ही, क्योंकि अभी अरमान ने कंप्लेंट की थी तो पुलिस को तो अपना एक्शन लेना ही था, और तब पुलिस वाले की बात सुनकर आहान बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्रिमिनल है या नहीं है इसका फैसला पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद करना, अभी फिलहाल इसे ले जाओ, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। अब आहान की बात सुनकर पुलिस वालों ने अपने हवलदार को इशारा किया, हवलदार ने जल्दी अविनाश के हाथों में हथकड़ी लगा दी। तब अविनाश बवाल मचाते हुए बोला, देखिए आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं किसी भी लड़की को गलत नज़र से देख ही नहीं सकता हूँ, अरे मेरी अपनी खुद एक बहन है, तो भला मैं किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, एक पल के लिए वहां शांति छा गई थी, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। वहीं आस्था को उसके मुंह से ये बहन वाला लफ्ज सुनकर बड़ी ही अच्छी फीलिंग आई थी, उसका दिल किया कि वो जाकर उसे गले से लगा ले, लेकिन अरमान का हाथ उसके कंधे पर मौजूद था और वो उसकी ओर ही देख रहा था। तभी आकाश तुरंत अविनाश के सामने जाकर खड़ा हो गया, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, बस करो अपना ये ड्रामा, हम तुम जैसे सरफिरों को अच्छी तरह से जानते हैं, अपना लुक हॉलीवुड हीरो के जैसा अट्रैक्टिव कर लेते हो ताकि लड़कियां तुम्हारे चक्कर में फंस जाएं, फिर उन्हें घूरते फिरते हो, कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी नहीं है ये सब देखते फिरते हो। ऐसा बोलकर आकाश ने उसकी इस बात को भी झुटला दिया था। अब तो अविनाश ने अपने सर पर हाथ मार लिया था, उसे समझ नहीं आया कि वो लोगों को कैसे हैंडल करे कैसे नहीं। लेकिन तभी एक आवाज वहां गूंजती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अब जैसे ही ये आवाज आई, सब लोग उस ओर देखने लगे थे और उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत फॉरेनर लड़की वहां खड़ी हुई थी, और आस्था पहली नजर में देखते ही उस लड़की को पहचान गई। ये लड़की तो वही थी जिसके साथ झड़प हुई थी और उसे लड़की को लेकर गई थी। आस्था को अभी थोड़ी देर पहले ही एंजल की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई थी। तब एंजल को अपने सामने देखकर अविनाश को ऐसा लगा मानो उसे डूबते हुए को सहारा मिल गया हो, और अविनाश ने जल्दी से कहा, ओहो एंजल, कम हियर प्लीज, कम हियर प्लीज, इन लोगों को बताओ मैं कौन हूँ, ये लोग मुझे खामखा गलत समझ रहे हैं। अब जैसे ही एंजल को अपने सामने देखकर अविनाश ने ये बोला, सब लोग अब कभी एंजल को देख रहे थे तो कभी अविनाश को देख रहे थे। अरमान एंजल की ओर देखकर पूछताछ करते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी एंजल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, मेरा नाम एंजल डिसूजा है और मैं मिस्टर रघुवंशी की सेक्रेटरी हूँ। अब जैसे ही एंजल ने ये बोला, सभी हैरानी से अविनाश की ओर देखने लगे थे। तब आकाश बोला, मिस्टर रघुवंशी? कौन मिस्टर रघुवंशी? तब एंजल बोली, ये आपके सामने खड़े हुए इंसान मिस्टर अविनाश रघुवंशी हैं, और ये कोई टपोरी या चोर किस्म के इंसान नहीं है। आखिर आप लोगों ने समझा क्या रखा है इन्हें? हथकड़ी क्यों लगाई गई है? हाँ, और ये सब क्या हो रहा है? सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इस होटल में क्या करने आए हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। तभी अविनाश इरिटेट होकर बोला, ओ कम ऑन एंजल प्लीज, इस वक्त मैं फंसा हुआ हूँ और मैं यहाँ क्यों था क्यों नहीं था ये इंक्वायरी तो तुम मुझे बाद में भी कर सकती हो, पहले इन लोगों को चलता करो यहाँ से। अब जैसे ही अविनाश ने इरिटेट होकर ये कहा, सब घूरकर अविनाश को देखने लगे थे। अविनाश की बातों से साफ पता चल रहा था कि अविनाश की बातों में कितना ऑर्डर सा था। अब तो पुलिस वाले का भी गला सूखने लगा था कि आखिरकार उसने किसी आदमी को हथकड़ी लगा दिया है।
फिर एंजल अविनाश के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और पुलिस वालों की ओर घूरते हुए बोली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जानते भी हो कि तुमने किन्हें हथकड़ी लगाई है? हाँ, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये तो इंडिया पहली बार आए हैं। ये क्या तरीका हुआ इनके साथ व्यवहार करने का? हम चाहे तो आप लोगों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। और जानते हो, और मिस्टर अविनाश जी की मानहानि करने के जुर्म में तुम्हारी सात पुश्ते तक बिक जाएगी, तब भी तुम उनका मुआवजा अदा नहीं कर पाओगे। अभी जैसे ही एंजल ने ये कहा, सब लोग हैरानी से एंजल की ओर देखने लगे थे। अब आहान खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि बार बार रौनक अविनाश को देख रही थी तो ये बात आहान को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, और वो तुरंत बोला, अच्छा इतनी बड़ी तोप है ये? अरे मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार ये कौन है जिनके बारे में हमें नहीं पता? क्योंकि आहान को तो यही लग रहा था कि जितने भी इस शहर में या आसपास के शहर में बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोगों को वो जानते हैं, और सभी लोग अरमान से नीचे ही आते थे, कोई भी अरमान से ऊपर नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से एंजल अविनाश की पहचान बता रही थी, तो वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, अच्छा अच्छा, जरा हम भी तो जाने दे कौन है ये। तब एंजल ने आहान की ओर देखकर कहा, ये है मिस्टर अविनाश रघुवंशी। अविनाश रघुवंशी द ओनर ऑफ रघुवंश एम्पायर, और हम इंडिया पहली बार आए हैं, वो भी सिंघानिया एम्पायर के साथ एक डील करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट्स करें दोस्तों, नीड योर सपोर्ट। टेक केयर टू यू ऑल।